ऐसे ही प्रणाम कर लिया, खबरदार उसके सीमाने में मत जाओ।
एक बार भी जिसने साष्टांग प्रणाम किया या गले झुका करके किया, हे प्रभु आपके लिए नमस्कार है, ऐसा कर दिया, खबर मत जाओ। जिसके गले में त्रिवली कंठी है, तुलसी की तिलक है, जो भगवान पर विश्वास करता है, खबरदार वहां पर त्रिसीमान में मत जाना। ये प्रभु के अधीन हमारे प्रभु के भी प्रभु के प्रभु प्रभु है, ये कृष्ण है, भगवान राम नारायण इत्यादि, खबरदार वहां पर मत जाना। झूठा मत समझना आप लोग, ये झूठी बात है, विज्ञान की कसौटी पर नहीं, हम देख नहीं पाते। तो जिसको देखते हो वैसी को सत्य मानते हो। एक बार हम लोग ट्रेन से जा रहे थे गुरु जी के साथ में, मथुरा से चढ़े कलकत्ते के लिए, एक आर्य समाजी आए, भगवान भगवान नहीं, भगवान नहीं, हमने उनको कभी देखा नहीं, जब जब देख रहे हैं तो भगवान को हम नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तब जब देखते ऐसे, जब तक जी भगवान की सेवा नहीं करेगा, भगवान के पास नहीं जाए, उसे सुख और शांति कदापि नहीं मिलता। अंश पूर्ण के पास में जरूर जाना चाहिए, यही थ्योरी है। जगत को ये पता नहीं, केवल भाव बच्चे ऋषियों को नहीं पता, इसलिए कहा गया देखो अंतिम समय तुम्हारा है, तुम इसी को रियलाइज करो। उन्होंने भक्ति की भागवत की बात लिखी, ये मनुष्य मात्र का धर्म है, क्या कुछ नहीं कर सकते। हे कृष्ण आपके लिए प्रणाम है, इतना तो कर सकते हैं, यदि सिर नहीं झुका देते मन ही मन में तुम प्रणाम कर लो। अरे कलमा पढ़ने के लिए तो 10 बार दंड बैठक उठक करना पड़ेगा कि नहीं, 50 बार उठना बैठना पड़ेगा। हमारे यहां ये सिर की कोई बात नहीं, एक बार सिर झुका, नहीं सिर झुकाया, हे प्रभु आपके लिए प्रणाम, नहीं कर सका मन ही मन उनको प्रणाम करो, तभी प्रभु ले लेते। इतना सरल सहजना, धनी हो गरीब हो, ऐसा कोई व्यक्ति है कि धन नहीं है तभी वो भगवान का नाम ले सकता है। नाम लेने में पैसा खर्च होता है, ये कथाएं जो हो रही है इसको सुनने में क्या खर्चा लेकर के आई, कुछ पैसा दिया, पैसा कोई मांगता भी है, इसलिए भगवान का नाम लेने में कोई भी पैसा नहीं लगता। मैं बहुत अस्वस्थ हूं, अरे अस्वस्थ है तो भगवान का राम राम नहीं कर सकता, किंतु एक न जाने कैसी विडंबना है, पापी लोग भगवान का नाम भी नहीं आता नहीं मुख पर। मैं एक समय हिमालय के पास में सिलीगुड़ी स्थान है बंगाल में, वहां गया, एक आदमी मर रहा, कहते मैं मर गया मर गया मर गया, जल रहा हूं। हमने कहा तुम राम राम करो तो कृष्ण कृष्ण, वो वही कर रहा है। मैंने कहा इतना कर रहा है, उतना क्यों, एक राम नाम क्यों नहीं करता, कभी हमारे मुख से ये नहीं निकलता। 1000 बच्चे हम लोगों ने नहीं कर सका, और ऐसे ही मैं गया जल गया करते 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 मर गया। तो ये देखने में तो बड़ा सुंदर सरल, ये छोटा सा नाम है, इसमें पैसे की जरूरत नहीं है, दिन में रात में पवित्र होकर के अपवित्र होकर के, सती आ रही है तभी कर सकते हैं, सती पेशाब आ रहा है तभी कर सकते हैं, मर रहे हैं तभी कर सकते हैं, एक लड़का का जन्म हो तभी कर सकते हैं, ऐसा नाम सरल सहज है तभी इसमें रुचि, इसी नाम को आश्रय करके हम जाए, यही भागवत का तात्पर्य है, इतना सरल सहज हम लोगों का ये भागवत का। उन्होंने बताया देखो मैं शूद्र था, मेरी मैया थी शूद्राणी, उसका काम था दूसरों के घरों में पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, और उसे जो कुछ मिल जाता जीविका निर्वाह करती थी मेरी मैया। मैं उसका छोटा सा एक ही बच्चा था, वो विधवा थी। मैं जब 5 वर्ष का हुआ, हमारे गांव में सब कुछ ऋषि महर्षि लोग आए, उन्होंने चतुर्मास से व्रत कर रखा था। आज तो हम समझते हैं कि यहां पर बहुत कम ही लोग जाने जाएंगे चौमासा किसे कहते हैं, कुछ लोग जानते हैं, बुढ़िया सब जानती होंगी, लड़कियां सब जो है वो नहीं जानेंगे जो चौमासा किसको कहते हैं, क्या बलाय है ये, तो तुलसी में पानी देना भी देना नहीं जानते, शौक पूर्ण होगा ये भी नहीं जानेंगे, जाता किसको कहते हैं शायद ये देखा ही नहीं है, जाता किसको कहते हैं, मूसल किसको कहते हैं, चक्की किसको कहते हैं, कोई पता ही नहीं ये कौन सा वेद की बात है, ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, इतनी चक्की नहीं पीसती, लोहा से अपना वो काम नहीं कर सकती, वो क्या करेंगे चुपचाप बैठे रहेंगे, वो आजकल क्या वो टीबी ना कैंसर क्या आता है वो देखते रहेंगे, दिन भर देखते रहेंगे, थोड़े से माध्यम ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मोटी हो जाएंगी, फिर किसी काम से जाएंगे, धीरे धीरे ये प्राचीन चीजें लुप्त होती चली जाएगी। तो वो बतला रहे हैं मेरी मैया शुद्ध थी, मैं 5 वर्ष का जब हुआ तो गांव में कुछ साधु संत आए, चातुर्मास माने श्रावण भादो ये चार महीने वर्षा के होते हैं। साधु संत लोग कहीं इधर उधर छोड़ करके नहीं जाते, जहाँ जम गए वहीं बैठ करके भगवान का चिंतन स्मरण भागवत तथा भगवान के संबंधी करने लगे। इस चातुर्मास में भगवान सोते हैं ऐसा प्रवाद है। कर्म में वो नहीं, उस समय कर्म करेगा उसका फल नहीं देते, इसलिए विवाह शादी इत्यादि जो घर बनाना इत्यादि सब मना था, इसमें शादी भी नहीं होती। ये पहले आजकल ये सब तो मानते नहीं, मानने की कोई जरूरत ही नहीं। जब ही आ जाए अंत तक कोर्ट में चले जाओ, कह दो जैसे मैं इससे ये इसे हमारा लव है, बस हो गया विवाह, और दो दिन के बाद में तीन दिन के बाद में झगड़ा हो गया, कह जैसे हम इनसे हमारी अनबन हो गई, अभी हमारे पति नहीं रहे, मैं इनकी पति नहीं रहे, बस एक दो मिनट में काम हो जाएगा। तो पहले वही बतला रहे हैं कि क्या बतला रहे हैं, हाँ, तो उसमें ऋषि लोग आए, वो एक जगह बैठ करके एक जगह उन्होंने पर्ण कुटी डाल दी और बैठ करके चार महीने भगवान की कथा कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, जैसे अभी कीर्तन हो रहा था अभी फिर कीर्तन होगा, भागवत की कथा हुई, इसके बाद में फिर अपना नाम कोई जप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब समय भगवत समय। मेरी मैया वहां पर गई और कहा जी आपके बर्तनों को मैं मांज दूंगी और जो कुछ जूठन में रह जाएगा वो मैं ले। गांव वालों ने नियुक्त कर दिया मेरी मैया वहां पर, उनके बर्तन लोग तो मांजने लगी, झाड़ू देने लगी, और मैं उसका पुत्र हमको गोदी में लेकर के जाती, मुझको उतार देती हूँ और मैं साधुओं के कपड़े जो भिजे हुए थे उसको लेकर के साफ कर देता है, उनका पानी कुचला देता है या और कोई सेवाएं होते करती, और उनके पास में बैठ करके भागवत की कथा सुनता, उनके उपदेशों को सुनता। ऐसे करते करते एक दिन मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा जैसे प्रभु आपके ये पत्ते में बचे हुए हैं, आपका प्रसाद मैं ले लूं, बस बड़े प्यार के साथ में उन्होंने उनको कुछ खिला दिया। देखा जी एकदम परिवर्तन हो गया, अब उसको भगवान की कथा में नींद नहीं आती, चाहे 10 घंटा बैठा रहे, बड़ी रुचि भगवान के नाम लेने थी, और धीरे 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 भगवान में आकर्षण उसका होता गया, कथा सुनते गया, आत्म तत्व का ज्ञान हुआ, भगवत तत्व का ज्ञान हुआ। जब उसने देखा जैसे ये संसार सब नश्वर है, इसमें सुख नहीं है, ये बंधन अवस्था है, ये सब जान जब समझ गया की तरह से, तो 4 महीना पूरा हो गया, ऋषि लोग वहां से जाने लगे। इसने कहा कि आप लोग जा रहे हैं, आपके बिना तो मैं रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा देखो एक बात करो, तुमको हम कुछ मंत्र दे रहे, तो इस मंत्र का तुम उच्चारण करते अभ्यास करना, एकांत निर्जन स्थान में इसका तुम चिंतन करना, अंततः इसको जैसा हम बतला रहे हैं वैसा ही करना, नियमित रूप में करना, एक दिन छोड़ना मत। वो मंत्र आप लोग शायद सभी लोग जानते होंगे, ये भागवत में लिखा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र। किंतु ये मंत्र ऐसे लेने से काम नहीं करेगा, जिसने शक्ति से इसका साधन किया है वो दे देगा तो होगा, अन्यथा शब्द ब्रह्म नहीं होगा। इस चीज को समझिए, हम अपने मन से हरे कृष्ण लाख करें नहीं होगा, और जिसने इसमें सिद्धि की है अनुभूति की है ना, उसको शब्द ब्रह्म के रूप में देखा है, वो दूसरों को देंगे तो उसका अपने आप हो जाएगा। नारद ऋषि कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने सनक संदन सनक कुमार ने हमको ये मंत्र दिया, मंत्र देने के बाद वो चले गए और मैं रह नहीं पाता, दिन रात भगवान की याद आती, उन ऋषियों की याद आती। धीरे 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 मैंने सोचा कि मैया हमको गोदी से छोटी नहीं, मैंने कहा यदि मैया मर जाती तो मैं स्वतंत्र होकर के इस मंत्र को करता। देखा जी सवेरे ही उसकी मैया आज पुष्प चयन करने के लिए गई और एक सांप निकला उसको काला उसने दस्त दिया और वहीं पर साथ ही साथ में मर गई, साथ ही साथ में उसका उन्होंने कोई संस्कार नहीं किया और जंगल में दौड़ते हुए चले गए, कोई अब रोकने वाला नहीं रहा। गंभीर से गंभीर अरण्य में पहुंचे जहां पर बाघ भालू इत्यादि रहते हैं, शेर रहते हैं, और एक नदी में स्नान किया और उसी में स्नान करके पानी उनी पी करके एक ऊंचे से स्थान पर बैठे और वही ओम नमो भगवते करते 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 एकदम ध्यान हो गया। वासुदेव उनके बहुत दिनों के बाद में कुछ दिनों के बाद में चित्त जब निर्मल हो गया, संसार की कोई भी अभिलाषा नहीं रही, सब कुछ मंत्र के प्रभाव से दूर हो गया, प्रभु उनके चित्त में ही आविर्भूत हो गए, संघ चक्र कदापद इत्यादि लेकर। जब देखा इसके बाद में आंख जब खुला तो देखा जिस सामने वो खड़े थे, प्रभु को प्रणाम किया। इसके बाद में एक क्षण में अंतर्ध्यान प्रभु हो गए, कोई बातचीत कुछ नहीं हुई। अब तो वो तड़पने लगे, प्रभु एक बार और दर्शन दीजिए। जब एकदम छटपटाने लगे तो आकाशवाणी हुई, हमारा दर्शन बहुत दुर्लभ, कृपा करके तुमने हमने तुमको दर्शन दिया एक बार, किंतु इस हार चाम मांस के शरीर में मैं अधिक नहीं, बस एक बार दिया, इसलिए तुम हमारा स्मरण करके ध्यान में लग जाओ। इसको कहते हैं ध्यान। आजकल एक ध्यान पद्धति निकली है, वो यहाँ पर जितने भी पार्क होंगे ना, हमने दिल्ली में देखा सब पार्कों में दो दो चार चार पांच पांच ध्यान वाले 10-10, 20-20 हजार आदमियों को शिक्षा दे रहे हैं, ये ध्यान लगाओ। हमने कहा ध्यान किसका लगाता है, तो परमेश्वर का ध्यान, कभी देखा तो नहीं, तो देखने कल्पना करके ध्यान करता है ना, वास्तविक प्रभु का ध्यान करता है। अच्छा तुम हमारे पिताजी का ध्यान करो तो उनको तो देखा है नहीं, तो फिर जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे होगा। अरे सहज में जो कलयुग, कलयुग केवल नाम आधार है, नाम लेने से उसका जैसा आकार होगा वो हमारे हृदय में आ जाएगा, इसलिए कलयुग के लिए ध्यान नहीं है। खबरदार ध्यान की तरफ में मान लिया तो पागल कुछ दिनों में हो जाएंगे, गए तो योग शिक्षा और हो जाएगी भोग शिक्षा, इसे वैसे नहीं जाओ, सरल साधी रूप में चलो, हमारे शास्त्रों में जैसा बतलाया गया, भगवान को अपने चरणों में, भगवान के चरणों में शरणागत हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान का नाम करो, जैसे हैं वैसे हमारे हृदय में रियलाइज करा देंगे, आविर्भूत हो जाएंगे। ये सहज पद्धति है, ये इसका नाम है भक्ति। जबरदस्ती तुम भक्ति करने जाओगे भगवान का ध्यान, तो ये गौतम बुद्ध को जैसा हुआ ऐसे ही होगी। उन्होंने कहा कि ये संसार शून्य है, भगवान शून्य है, शून्य से जगत हुआ, शून्य में मिल जाए, तरह क्या को तुम भी शून्य भी है, ये शिक्षा देने की जरूरत क्या। इसलिए भारतीय पद्धति बहुत धर्म नहीं है, उसमें सभी शून्य। और हमारे यहाँ क्या है, पूर्णम इदम पूर्णम अदः पूर्ण उदित्यते पूर्णश्च पूर्णम आदाय पूर्णमेव। हमारा तो पूर्ण है, कृष्ण परिपूर्ण है, भगवान पूर्ण है, इसलिए पूर्ण में से जो कुछ भी ले लिया जाए वो पूर्ण ही रहेंगे सबसे। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसलिए ये पूर्ण है। हम लोग पूर्ण के से निकले हैं, हम उनके दास हैं, इसलिए पूर्ण में जब तक नहीं मिलेगी उनकी सेवा नहीं आएगी, हम कभी भी सुखी शांति नहीं रहेंगे। इस थ्योरी को समझना चाहिए। इसलिए उन्होंने नारद जी कुछ दिनों के बाद में आकाशवाणी है जी आपका दर्शन नहीं होगा, तुम ऐसा करो हमारा नाम जगत में प्रचार करो, जब तक तुम्हारा शरीर प्रारब्ध से है तब तक करते 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 हमारा चिंतन करो, कुछ दिन के बाद में ये शरीर खत्म हो जाएगा और तुम भगवान का पार परिकर होकर के बैकुंठ लोक हो जाएगा। समय आने पर चारों तरफ में हरि नाम करने लग गए, करते 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 जब समय आया उनकी मृत्यु आई, मृत्यु के शीर पर पैर रख करके शरीर को छोड़ करके उसने अंदर जो आत्मा का शरीर लेकर के बैकुंठ धाम में पधारे, अब सर्वत्र वो घूमते हैं, उनकी अजर अमर हुआ है, बिन गुरु के एक ज्ञान नहीं हुआ। मंत्र रहने पर भी, इसलिए भागवत को समझने के लिए इसकी जरूरत है, बहुत सागर को पार करने के लिए, जीवन में सुखी शांति होने के लिए और अंत में भगवान को प्राप्त होने के लिए इसकी जरूरत है। इसके बाद उन्होंने और सब कथाएं आरंभ की और कल हम लोग उसका आरंभ राष्ट्र को अलग हटा दो, उस पद को हटा दो राष्ट्र से, पूरा राष्ट्र निकाल दो, संसद सांसद जो कुछ है सब निकाल दो, उनके परिकर को हटा दो, तो वो राष्ट्रपति रहेंगे, व्यक्तिगत एक व्यक्ति रह गया। नहीं प्रभु एक नहीं है, प्रभु ये अनंत को भी जीव है, राधा इत्यादि शक्तियां हैं, मैया यशोदा नंद बाबा इत्यादि कितने कोटि माता पिता हैं, उनके सेवक हैं, सखा हैं, धाम है, उन्हीं से निकला है ये विश्व ब्रह्मांड है, ये सब मिला करके वो प्रभु है। प्रभु है तो उनका दास तो होना चाहिए, सेवक तो होना चाहिए, ये सब मिला करके एक होता है, जैसे कोटि कोटि बिंदु मिल करके एक रेखा होती है, इस तरह से
एक
साधारण
उदाहरण,
ये तो उदाहरण एक पेड़ है, उसकी जड़ और उसका जो फल है एक है, किंतु जब पेड़ लगा हुआ है उसमें जड़ से लेकर के पत्ते और डालियां और फल सब मिला करके एक पेड़ है, एक हुआ, किंतु उसी में जब डाली और फल और जड़ छीनता तब ताजी अलग अलग रहती एक है,
अलग अलग है लेकिन
इसलिए तब एक है, किंतु एक नहीं है। लाखों डालियां हैं, लाखों फल लगे हुए हैं और एक एक जो उसमें फल है अलग अलग जगह उसको गाड़ दो तो अलग अलग पेड़ भी बन जाएंगे उनकी सत्ता है। नहीं उसको कभी कहेंगे आम का पेड़ है, नहीं उसमें लगा हुआ रहेगा ना, नहीं लाख आम उस एक आम के पेड़ में लगे हुए हैं तो कहेंगे जी देखो तो आम का पेड़ इसमें पत्ते झूल रहे हैं, आम झूल रहे हैं, इसमें ऐसा हो रहा है, किंतु एज ए पेड़ एक ही है, पेड़ में ही फल पत्ता सब कुछ है। उसी तरह से भगवान ये सब मिला करके एक है, यदि कोई है ही नहीं तो भगवान नाम की क्या चीज रहेगा, जिसमें जीव रहना चाहिए, शक्ति रहना चाहिए, बड़े उपकारी होना चाहिए, उसमें गुण होना चाहिए, सर्वज्ञता होनी चाहिए, सर्वज्ञता तब तक नहीं जब सब रहेंगे तब उनके सबको मन को जानने वाला होना चाहिए। सर्वज्ञता माने क्या, करोड़ों करोड़ों जीव और अक्षर है तो सबके मन की बात को जानने वाला तब तो सर्वज्ञ होगा, आगे कोई वस्तु अलग ही नहीं है तो सर्वज्ञ कहां से होगा। बड़े दयालु हैं माने क्या, दया का पात्र होना चाहिए ना, दया का पात्र नहीं है तो दयालु कैसे हो जाएंगे, इसलिए दया का पात्र भी करोड़ों हैं जीव हैं। इसलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन यूनिटी, एक में बहुत्व बहुत समय, एक में अनेकत्व और अनेकत्व में एक, ये सिर के तुम्हारे जो केश हैं ये तुमसे पृथक है कि एक ही है, बताओ इसको काट देंगे तो तुमको कष्ट होगा, तुम्हारे नख है उसको अलग कर दिया होगा तो नख ये तुम है कि ना तुम्हारे अंग है ना क्या चीज है, जब तक तुम्हारे साथ में मिले हुए केश और नख और ये सब चीजें हैं तब तो एक है, और तो काट दिया तो अलग हो गया, इसलिए अलग भी है नहीं भी है, इसी का नाम अचिंत भेदा भेद है। इसमें प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, प्रेम है मैं देखता हूँ इनमें है, सुअर में है, गड्ढे में है, घोड़े में है, तो यदि वो है तो उनको जाकर के गोदी में ले लो सुअर को, बेटा है कोई फिर तो उसमें है कि नहीं, ले ही होगा उनको प्रेम किया उसे, और बताओ क्या कथा वहां पर बोले जीवन सबसे बड़ा, ये कृष्ण ही कृष्ण नहीं पर तत्व ही एकमात्र तत्व है निर्विशेष है, उसकी छाया करती है तो वो वहाँ पर पानी हिल रहा है इसलिए वही ताजा दिखाई देता है, तो ये जीव है इसको सुख दुख के लिए हो रहा है आकाश के हिल रहा है, ये छाया झूठा प्रतिबिंब है, हम कहते हैं कि ये शास्त्रों में इसके लिए उदाहरण नहीं दिया गया, ये उदाहरण किस लिए दिया गया, जैसे एक आदमी है हरि नाम कर रहा है और संसार की चीजों में घूम रहा है, उसका जो नाम है वो प्रतिबिंब है, वो नाम नाम नहीं है, वो उस नाम का प्रतिबिंब है, यदि असल नाम होता तो फिर उसका दर्शन पा जाता, उसमें नये नंगल दास उधारया, नये नंगल दास उधारया, बदनंद गदगद उद्धया गिरा, उनका निश्चितन बहुत पदार्थ नाम का, ये संसार जो है ये प्रतिबिंब है उस जगत का, ये हिलती जुलती दुख में नजर आती है, उस जगत में शांति रहती है, उसमें जन्म मरण नहीं होता, इसमें जो दिखता है ये सब प्रतिबिंब है, वो लोग इसको ब्रह्म और जीव में ये प्रतिबिंब दिखता है, हम लोग उसको नहीं दिखता, वो गलत है। जीव हुआ कहाँ से, जीव हुआ कहाँ से, यदि ये तो माया लगने के बाद में ये जीव बना है, उसमें तो जीव ही नहीं था, तो ये किसको लगा आ रहा समझ में? नहीं आएगा तुम बहुत कठिन, तुम लोग समझती है
नहीं?
वो लोग कहते हैं ये जीव ब्रह्म से ही जीव हुआ। कैसे हुआ? ब्रह्म को माया जो है पकड़ लिया, छाया ब्रह्म। किंतु कहते हैं एक ईश्वर एक ही है ब्रह्म द्वितीय होना, तो ये माया कहाँ से आ गई? आप दूसरी बात लगी तो किसको लगी? ब्रह्म तो सब समय ज्ञान पूर्ण है, उसको माया कहते एक झूठी चीज पकड़ लेगी, पकड़ लेगी उनको ने, तब फिर ये जीव कहाँ से आया? वही तब कहेंगे जीव को माया ने पकड़ा है। और जिस तो जब नहीं पकड़ा था तो तब तो माया ने उनको पकड़ा, तब से ये हुआ, तो उसके पहले जीव कैसे हो गया? ये कुछ तुमको अभी नहीं समझ।
जीव को पकड़ने के पहले माया उसको पकड़ना चाहिए था, वो तभी वो जीव को पकड़ेगी पहले।
जीव हुआ कैसे?
समझ में आ गया
कुछ? जीव हुआ कैसे? वो कहेंगे जैसे माया के वजह से माया ने पकड़ा, तो जीव तो पीछे हुआ, माया को पकड़ने के बाद में माया ही प्रतिबिंबित होकर के जीव हुआ, माया से प्रति जीव हुआ। किंतु तुम कहते हो जैसे ब्रह्म को माया पकड़ नहीं सकती, तो ये जीव हुआ का इधर जीव को नहीं लगी है ब्रह्म, किंतु ब्रह्म तो आनंदमय है, ज्ञानमय है, प्रकाशमय है, उसको माया कैसे पकड़ेगी? और न, माया नाम की दूसरी चीज आई कहां से, जबकि एक ही पर है द्वितीय होना आई कहां?
माया भी भगवान,
ये तो हम लोग का विचार
है कि माया का हिसाब से माया कहां से
निरांध्रस्य ज्ञानं जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकंचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकाकर्या आजुहाव कुथेति तन्मयतया सर्वोऽभिने तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुपो तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं मे माम।
श्रीमद्भागवत से कल नारद जी का चरित्र सुनाया, कैसे भक्ति होती है इसको हमने बताया, ये भी उसमें बताया कि कैसे गुरु नारद जी आए और शिष्य व्यास जी के हृदय में प्रेरणा की तो भगवान की कृपा उन पर हुई। जब तक महत्पुरुषों की साधु संतों की कृपा नहीं होती भगवान अंगीकार नहीं करते। अभी इस विषय में हम लोग गुरु जी का चरित्र आप लोगों के सामने हम लोग वर्णन करें, प्रहलाद जी का चरित्र वर्णन करें, अजामिल का चरित्र वर्णन करें। पहले भक्तों का चरित्र वर्णन करने के बाद में भक्तों का चरित्र वर्णन करेंगे किस प्रकार से भगवान से बिछड़े हुए जीव भगवान को प्राप्त किया और भक्ति की क्या जरूरत आवश्यकता है, भगवान की क्या जरूरत है, आजकल तो देखते हैं कि जो भगवान को नहीं मानते, जितने अन्याय अत्याचार करते हैं वो बहुत फूलते फलते हैं। आज जो भगवान का भजन करते हैं तो उनको देखते हैं वो भीख मांगते हैं, गरीब दरिद्र बने रहते हैं। तो भगवान को भजन करने की जरूरत क्या है, ये सब पार हम लोग विचार करते हैं। और विचार करके जो लोग नहीं समझते उनको हम समझाने की चेष्टा करते हैं। अभी प्रारंभ में हम लोग कैसे नारद जी की कृपा से ध्रुव जी भगवान को प्राप्त किया, इसके संबंध में कुछ हमारे नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी जी उनके चरित्र पर प्रकाश डाले। ध्रुव जी के संबंध में कुछ सुना। ध्रुव जी ने भगवान की भक्ति, पहले हम लोग इस पर विचार करें ये भक्ति किसको कहते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान का मार्ग जनाप्रतम, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। जब हम अपने तन से, मन से, वचन से, सब प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। किंतु उसमें एक शर्त है, यदि कृष्ण की भक्ति से आपको कोई सांसारिक कामना की लालसा रहे तो वो सकाम भक्ति हो जाएगी। ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया, ध्यान लगाया, उनका नाम जप किया, भगवान के लिए खाना पीना श्वास लेना बंद कर दिया, भक्ति तो है ये। किंतु पिताजी ने अपने गोद में नहीं बैठाया, माने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बनाया, इसलिए इनके मन में ईर्ष्या हुई। और माता के परामर्श से हरि की आराधना की, ये प्रभु मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, हमको राज्य मिलना चाहिए। ये हो गई सकाम भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति। उसका फल यह हुआ कठोर तपस्या उन्होंने की, किंतु अपने लिए कुछ लालसा की और भगवान से कुछ मांगा, और भगवान ने उनको 36,000 वर्ष तक निष्कंटक पृथ्वी का राज्य दिया। इसलिए ये भक्ति नहीं हो करके, सकामा भक्ति हो करके, इसे भक्ति भगवान की प्रसन्नता नहीं हुई। दूसरी बात, यदि कोई मोक्ष की लालसा से या हमको संसार के दुखों से रिहाई मिल जाए, इसलिए भगवान का नाम कीर्तन करता है, स्मरण करता है, भागवत की कथा सुनता है, उसके द्वारा उसको मुक्ति मिल जाएगी। किंतु भक्ति नहीं मिलेगी, उनका प्रेम नहीं मिलेगा। दुखों से निवृत्ति ही हमारे लिए जरूरी नहीं है, संसार से हमको दुख न मिले, मुक्ति मिले। एक आदमी आपका गला दबा रहा था, आपने उसे छुटकारा आपको दिला दिया, किसी ने आकर के उसको हटा दिया, आपके हाथ बंधे हुए हैं, रस्सी से उसको खोल दिया, इसको तो मुक्ति कहते हैं। इसलिए संसार के आवागमन से छुटकारा पाने का नाम मुक्ति है। किंतु इसके बाद हाथ छूटने के बाद में क्या होगा, इस पर विचार करना है। इसलिए मुक्ति जरूरी नहीं है, कृष्ण की सेवा मिलने से उसका जन्म मरण तो अपने आप दूर हो जाएगा, साथ साथ में वो सुखी रहेगा, शांति रहेगा, नित्य काल भगवान की सेवा करे, क्योंकि वो भगवान का अंश है, भगवान का दास है, इसलिए सेवा ही सबसे आवश्यक। इसलिए श्रीमद् भागवत इत्यादि में मुक्ति को अत्यंत तुच्छ कहा गया। इसलिए कोई चीज की लालसा रखना भगवान का भजन करके, ये भक्ति नहीं है। ध्रुव जी ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, इसलिए उनको सकाम भक्त कहा। उन्होंने ये कहा कि प्रभु मैं नहीं समझ सका, इसलिए आपसे राज्य मांगा, 36,000 वर्ष आपने दे दिया, आपको चले गए, अब तो मुझको भोगना पड़ेगा, 36,000 वर्ष हमारा बेकार का गया, आपके चरण कमलों को मैं नहीं पा सका। ध्रुव लोक इस पृथ्वी, ये ब्रह्मांड के अंतर्गत में है, यहां से दिखता है, किंतु अचल है, सूर्य भी इसकी परिक्रमा करते हैं, यहां तक तो ठीक है, सुख भी उनको है, किंतु भगवान की जो प्रेम सेवा है ये इनको लाभ नहीं, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए कृष्ण की सेवा ऐसी होनी चाहिए जिसको संसार की कोई कामना उसमें न रहे, मुक्ति की भी लालसा न रहे, संसारी के हम स्वर्ग सुख इत्यादि की भी इच्छा नहीं रहे। कृष्ण कहिए क्या चाहते हो, प्रहलाद महाराज ने इस चीज को बताया। इसलिए हम लोग प्रहलाद महाराज जी का चरित्र इसके बाद में हम वर्णन करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग नाम के संबंध में बताएंगे। देखिए एक समय वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण रामचंद्र जी के रहते हुए ही बनाया, लीला से पहले ही बना दिया, क्योंकि वो सर्वज्ञ थे। आप लोग उनका तो जीवन चरित्र जानते हैं कि वो एक तरह से ब्राह्मण के लड़के थे, किंतु कुसंग में पढ़कर भगवान के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, माता पिता के प्रति श्रद्धा को भी नष्ट कर दिया और डकैत बन गए। बस लोगों को मारना काटना बस यही उनका धर्म रहा, ब्राह्मण का लड़का होने पर गायत्री इत्यादि सब। एक दिन नारद जी मिले उनसे, इधर उन्होंने कहा जी से तुम इधर क्यों आया, तो क्यों आ, तो मैं लूटेरा हूं तुमको भी लूटूंगा। अरे ये तो बता, ये तो लूटेगा, ये पाप करेगा तो तुम्हारे माता पिता उसमें भाग लेंगे, तुम्हारी पत्नी भाग लेगी, तुम्हारे लड़के लेंगे। पर अच्छा तो ठीक है, तुम जाओ घर में पूछाओ, कोई नहीं लेगा। कहिए तुम भाग जाने के लिए ऐसा करता है, अच्छा तो हमको बांध करके जाओ। तत्व से उनको पेड़ की छालों से उसको बांध दिया और गया घर। माता पिता से पूछा जो मैंने ये जो कुकर्म किया, इसका जो हमने लूट लाट करके जो लाया, प्राणियों की हिंसा की, इसका फल आप कुछ लेंगे कि नहीं। कहे बचपन में तुमको मैंने खिलाया पिलाया, पालन पोषण किया, अब तुम हमको जहां से लाएगा लाएगा, इसका फल मैं नहीं भोगता, तुम ही भोगेगा। मैया ने भी ऐसे उत्तर दिया, पत्नी ने उत्तर दिया, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं घर में सब काम करूंगी किंतु तेरे पापों का फल भोग नहीं मैं करूंगी। तुम्हारा भरण पोषण करना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है, जैसे भी लाओ, तुम्हारे पापों को भोग करने के लिए नहीं। अंत में लौट करके गया, लौट करके गया तो कहिए माता पिता या स्त्री भाई बंधु किसी ने नहीं दिया, न लेते हैं। देखो इसका फल कैसा होता है, एक पानी बूंद लिया और प्रोक्षण करके छोड़ दिया। देखा क्या कि जिन जिन लोगों को मारा है उसी तरह से तलवार बल्लम बाण धनुष लेकर के उसको मारने के लिए तैयार है। लंबी लाइन लगी हुई है मीलों, देख करके घबरा गए, मार रहे हैं वो लोग, मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मार रहे हैं काट कर। एकदम घबरा गया, आंख बंद हो गई और छटपट छटपट कर रहा। फिर उन्होंने पान उठाया, मंत्र पढ़ करके प्रोक्षण करके छोड़ दिया, उत्तर से खड़ा, प्रभु मेरी गति कैसे होगी, इतने पापों का फल भोग करना पड़ेगा। अरे एक बात है, तू यदि भगवान का नाम करेगा तो इन पापों से तुम्हारा छुटकारा हो सकेगा, तू राम नाम कर, धनुष को ये छोड़ दो, लोगों को मारना छोड़ो, अरे यहीं पर बैठ करके तुम भगवान का नाम करो। राम नाम करने की बहुत चेष्टा की किंतु नहीं निकला। उन्होंने कहा जैसे जब नहीं निकलता है, एक बात कर, मार काट तो बहुत किया है, मरा मरा जरा बोलो तो मरा मरा आ गया, राम नाम नहीं आया, तो मरा मरा जब काम लगा था करते करते मरा मराम राम छूटा होकर उल्टा नाम जब वाल्मीकि भय ब्रह्म समान है, उल्टा नाम करने से जिसका ब्रह्म के समान अतत सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वशक्तिमान हो जाता है, ये नाम का फल है। विश्वास रखिए आप लोग, यदि विश्वास नहीं है तो आप 10 दिन नाम करके देखिए ये उसका क्या फल होता है, जरूर ही फल होगा। बहुत से लोगों को हम लोगों ने देखा जो मदिरा पान करते थे, मांस खाते थे, लड़ाई इत्यादि करते थे, हरि नाम लेने के साथ ही साथ ये सब चीजें दूर हो गई और एकदम सत्व गुण में प्रतिष्ठित हो गए। वाल्मीकि जी उसी नाम के बल पर भगवान नाम का नाम करते करते रामलीला पहले ही लिखती, जो रामलीला भी नहीं हुई। ऐसे ये नाम में नाम की महिमा है, बड़े बड़े लोग सुधर जाते हैं। उन्होंने जब वाल्मीकि रामायण लिखा इसमें 100,000 के श्लोक थे, देवताओं ने कहा ये हमको दे दीजिए, मनुष्य ने कहा ये हमको सुनाइए, राक्षसों ने कहा ये हमको सुनाइए। तीनों ने लड़ाई होने लगी, शंकर जी आ गए, उन्होंने कहा लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं बांट करके दे दूंगा। 100,000 के श्लोक को 3 भाग किया तो ये कितना भाग हो गया?
1,000
बच गया, 33,99। 1,000 को फिर उन्होंने 3 भाग में विभाग किए,
300, 900
हो गया, 1 श्लोक बच गया। 1 श्लोक उन्होंने कहा जैसे भाई 4 भाग करो, 1 श्लोक में 4 चरण होते हैं, नमो महाबलान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते 2, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नम, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत, ये तीसरा चौथा चरण। ऐसे प्रत्येक उसमें अनुष्ठुप छंद है रामायण में और उसके 4 चरण, 1 श्लोक को उन्होंने 3 चरण बांट दिए। अब 1 चरण रह गया, फिर 1 चरण में 8 अक्षर होते हैं, उन्होंने फिर इसका 2-2 करके 2/3 6 दे दिया। अब कितने रह गए? 2 अक्षर रह गए, यही 2 अक्षर राम है। समस्त शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, रामायण का ये सार है राम या कृष्ण, हम इसको समझिए। यदि सब कुछ पढ़ लिया, सब पोथी पढ़ ली और भगवान के नाम में विश्वास नहीं हुआ तो सब चला गया बेकार। और यदि किसी ने भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण राम राम ये सब किया तो उसका सब कुछ शास्त्रों का पढ़ना हो गया, या था विश्वास पूरा रखिए। जिसने जिसने नाम किया ना सब होता है। अभी भी हम देखते हैं, हम लोगों को जो कुछ देखते हैं ये नाम का प्रभाव, और कोई विद्या भी नहीं है स्कूल कॉलेजों में, हमसे पढ़ने वाले कितने एमए बीए पीएचडी डी लीड से भी ऊपर कितने वाले हैं, किंतु राम नाम का प्रभाव है, कृष्ण नाम का प्रभाव है। आप लोग भी कर करके देखें दुख दूर हो जाएंगे, चिंता नहीं रहेगी, चित्त शासन की दूर हो जाएगी, चंचलता चली जाएगी। कुछ दिन कर करके से देखिए, और यदि गुरु के द्वारा महापुरुषों के द्वारा संतों के दिया हुआ शुद्ध यदि नाम है तब तक तो कहा नहीं किया, कुछ दिनों में ही एकदम बदल जाएगा ये सब, परम सुखी यही संसार हो जाएगा। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसके व्यवहार की जरूरत है, सुंदर रूप में इसका व्यवहार होना चाहिए। रुपया खराब नहीं है, धन खराब नहीं है, स्त्री पुत्र परिवार खराब नहीं है, उनके प्रति हमारा जो सुव्यवहार और कुव्यवहार है इस पर निर्भर करता है, सोचने का तरीका है। यदि इस विश्व को हम सोचे ये विश्व के जितने अर्थ है ये भगवान की सेवा के लिए है, उनके सेवकों की सेवा करने के लिए, मेरी स्त्री भी प्रभु की सेविका है, हमारा बेटा भी प्रभु का सेवक है, मैं भी प्रभु का सेवक हूं, बुरा क्या चीज रहा? इसलिए उसका सदव्यवहार करना चाहिए, इसलिए भगवान का नाम करना चाहिए। नाम ऐसा, नाम का फल देखिए, रामचंद्र जी रामेश्वर में खड़े हैं, पुल बंध रहा है रामेश्वर का, कपी बंदर भालू सब बड़े बड़े भी देवता लोग ये हैं, ये लोग भाई इधर सुनो बातचीत मत करो, अरे बच्चा बातचीत मत, तुम भी इसमें बात मत करो, पुल बंद रहा है, नलिन खड़े हैं, पर्वत चट्टान सब कुछ आ रहा है, बस राम कहा स्पर्श कर दिया उतरने लग गया। अभी इसका प्रमाण है जब हम लोग शेख बांध रामेश्वर में आज से 50-60 वर्ष गए थे, जबकि रामेश्वर नगर ध्वंस नहीं हुआ था, बाढ़ में नहीं विलीन हो गया था, रेलगाड़ी वहां से रामेश्वर से धनुषकोटी जाती थी। इसमें जो पुराने लोग होंगे गए होंगे तो धनुषकोटी का दर्शन किया होगा। धनुषकोटी जाने पर रेल से वो साफ दिखाई पड़ता था उनका। इसलिए लंका और हिंदुस्तान के बीच में जहाजें बड़ी बड़ी नहीं चलती हैं, उस पार से बीच में नहीं जाती, ये पर्वत के सब टुकड़े लगे हुए तो पर्वत तैरने लग जाते। अब करीब करीब पुल तैयार होने वाला था। राम ने सोचा, देखो तो ये बंदर भालू हमारा नाम ले रहे हैं राम राम, और पत्थर को छू देते हैं और वो तैरने लगता है, मैं भी एक पत्थर को उठाऊं और छोड़ दूं तो। किंतु लज्जा की बात होगी यदि किसी ने देख लिया और यदि डूब गया तो। इसलिए एक झाड़ी में चले गए, जहां पुल बंद रहा था उससे पास ही में झाड़ी थी, झाड़ी की तरफ में चले गए और छिप करके एक पत्थर उठाया और ऐसे छोड़ा, छप शब्द हुआ, डूब गया। इतने में हनुमान जी उनको खोजते बैठ गए, अरे प्रभु किधर गए, प्रभु किधर गए। देखते तो उसी झाड़ी में आ गए, झाड़ी में, अरे प्रभु आप यहां पर कैसे, तो तुम यहां पर कैसे, तुमको क्या जरूरत पड़ी थी यहां, प्रभु बताइए तो आप किस लिए यहां। और बड़े चिंता निमग्न देखते हैं, क्या बात हो गई। तो कहूं तुमसे एक बात, दूसरे से कह नहीं सकता, बड़ी लज्जा की बात, अरे हमारा नाम लेकर के पत्थर रखता है वो तैरता है और मैंने पत्थर छोड़ दिया वो डूब गया, ये क्यों। कहे प्रभु आपका नाम लेकर के विश्व को लोग तैर जाते हैं, ये बात तो ठीक है, किंतु आप जिसका त्याग कर देंगे वो क्या होगा,
डूबेगा।
इसलिए आपने इस पत्थर को त्याग कर दिया तो वो डूबेगा ही। देखिए भगवान का नाम कैसा, भगवान की जितनी शक्तियां हैं सब नाम में भर दी है। भगवान बड़े दयालु हैं किंतु नाम उनका उनसे भी अधिक दयालु है। प्रभु बड़े वीर हैं, ये नाम का नाम उनसे भी शक्तिवान है, शक्तिशाली। कृष्ण ने राम ने अपने समय के सबरी इत्यादि कुब्जा इत्यादि का उद्धार किया और लोगों का भी उद्धार किया, इन्हें गिने लोगों का, मुट्ठी में उसको गिना जा सकता है। किंतु नाम भूतकाल से लेकर के अभी तक और जब तक जगत रहेगा तब तक कोटि कोटि लोग भगवान का नाम लेंगे और उनसे उद्धार पा जाए। तो बतलाइए कौन बड़ा दयालु हुआ, ये नाम बड़ा दयालु हुआ। इसलिए भगवान का नाम कोई बालक, भगवान का दर्शन पापी लोग नहीं कर सकते, जिनका चित्त विश्व में है वो लोग नहीं दर्शन कर सकते, किंतु एक पापी व्यक्ति भी भगवान का नाम लेने योग्य है, ऐसे समय की बात है। नारद जी कहीं घूम रहे थे, देखा एक तेली को, दिन भर तेल तैरता था। कुल्हू देखा आप लोगों ने, जो पहले वाले आदमी होंगे कुल्हू देखेंगे, आजकल तो इतने कल कारखाने हो गए हैं जो सरसों का तेल उतना मिलता ही नहीं है, कितने अब कल भी बंद हो गए, अब कल मशीनों में दे दो और झट तेल हो जाता है। पहले एक बैल होता था उसको ठोली लगा देते और एक कुल्हू होता था उसी में चारों तरफ घुमाते, दिन भर घूमता और शुद्ध कच्चा धानी का तेल मिलता, बहुत ही सुगंधित, यदि यहां पर लगा लो तो आंख पर आती थी, शुद्ध चीज। बल्कि लोग उस समय में घी छोड़ करके तेल खाते थे सरसों का, शुद्ध तेल तीली का तेल और सब होता था। तो वो दिन भर हाथ बैल को हाथ वो चलाता और बैल घूमता बस उसी जगह, गोल एक जगह। नारदी ने कहा जैसे तू सारा दिन हाक हाक करता है, चल चल करता है और तू भगवान का एक नाम नहीं कर सकता, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है तुमको, फुर्सत नहीं आते, नहीं अरे तो तू टट्टी जाता है, पेशाब करने जाता है तो क्या करता है। तो प्रभु उस समय भगवान का नाम लिया जा सकता है, क्यों नहीं लिया जा सकता है। तो ठीक है, तो मैं काम जब वो समाप्त कर दिया 8-9 बजे रात में, वो टट्टी करने के लिए गया लोटा लेकर के, आज कल जैसे तो पैखाने थे नहीं, वो टट्टी करने मैदान में गया और टट्टी करने बैठ करके वो कहता है राम 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 करने लगा। हनुमान का ये नियम है कि जहां नाम होगा जरूर जाए, कोटि कोटि शरीर धारण करके जाते हैं, एक दो नहीं कोटि कोटि, कोटि कोटि भक्त लोग भगवान का नाम कर रहे हैं, हनुमान जी वही नाम सुनने के लिए जाए। जहाँ भगवान की कथा हो अभी हनुमान जी जरूर किसी न किसी रूप में आए, किसी न किसी रूप में जरूर बैठे ही होंगे, उनको पहचानना जरा सकता। तो वो हनुमान जी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने कहा जैसे ये इतना बदमाश है तेली, ये असमय नहीं करता है तो ये टट्टी करने के समय में प्रभु का नाम करता है अपवित्र होकर के। उनको बड़ा जरा रोष क्रोध हो गया, उन्होंने एक लात मारा उसको बड़ी जोर से, जी आपको पाकर के कुंभकर्ण गिर गया। और रावण क्या किया, मट्टी खा लिया, इतना जोर से मारा तो गिर गया और बेहोश हो गया। राम कुंभ उनको
मेघनाथ
को उठा करके फेंक दिया तो कहां उड़ गया। यदि उनके हाथ से मरना होता ना, राम लक्ष्मण जी के हाथ से मरना नहीं होता तो वो मार डालते उनको, उनके लात में उनके घुसे में उनके शरीर में इतना बल है, बस श्री राम कहा है और दिया बस खत्म। किंतु इतने जोर से लात मारा उस तेली का कुछ नहीं हुआ, हरे राम 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 कर रहा है। ये इसको क्या हुआ, ये तो कुछ हुआ नहीं, ये क्या बात। वो जैसा कहता है उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ नहीं बोले। देखा जैसे लात मारने से तो कुछ हुआ नहीं इसका, तो इसको और भी मारेंगे तो कुछ इसका होगा नहीं, बस चले आए। चलते चलते आकर के रामचंद्र जी के भवन में पहुंचे, रामचंद्र जी की सेवा करनी है। वहां पर बाहर से ही उनको आवाज आई, ऐसे भाई यार प्रभु ऐसे वहां क्यों कर रहे। उन्होंने वो भीतर गए और पूछा राम से, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, क्या हो कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, आपको कौन चोट दे सकता है, तब तुम ही ने हमको मारा और तुम ही हमसे पूछ रहा है। हमने कब मारा प्रभु, तो मारा माने ये बात है, जहां नाम है वही पर मैं हूं, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, अनुभूति का केवल प्रश्न है, हम उनको समझ नहीं पाते। जैसे एक सिक्का का दो पहलू है किंतु दो नहीं है, दोनों मिलकर के ही एक है, तो इससे भी अभी नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, इस चीज को समझो। जगत के कोई व्यक्ति जिसका नाम रखा है, कोई एक अंधा उसका मैया ने नाम रख दिया सुलोचन, ये तो जगत में पुरुषों के लिए दूसरों लोगों के लिए हो सकता, किंतु भगवान का ऐसा नहीं है। उनका नाम कमल लोचन है तो उनका लोचन भी कमल के तरफ में है, और इसी के समस्त इंद्रियों के प्रभु है। कृष्ण बड़े आकर्षक है, राम अत्यंत रमणीय है, उनका नाम और नामी में सब समय एक बात। तो तुमने समझा नहीं, उस देवी को जब तुमने मारा वो राम राम कर रहा था तो मैं उसके शरीर में प्रवेश कर गया, उस समय मैं अलग नहीं था, अब तुमने मारा वो चोट हमारे ऊपर में, हमारी कमर आ गई, हड्डी पसली तुमने चूर कर दिया। बड़े दुखी हो गए। अच्छा प्रभु मैं कान पकड़ता हूं कि आज ऐसा जीवन में मैं नहीं करता। देखो ये नाम की मैं ये झूठ बातें नहीं है, इस चीज को अच्छी तरह से समझो। नाम करेगा भगवान जरूर आएंगे, उसका कल्याण करेंगे ही, नहीं हो तो आप थोड़ा सा दो दिन दस दिन पांच दिन जरा करिए तो देखिए शांति आती है कि नहीं, तुम्हारा जीवन एकदम चेंज हो जाता है कि नहीं, किसी को मारने की इच्छा नहीं रहेगी, किसी की निंदा नहीं कर सकते, एकदम जीवन भी बदल जाएगा, वैकुंठ का जीवन हो जाएगा। इसी चीज को अच्छी तरह से समझाने के लिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कह रहे हैं, देखो इस चीज को समझो अच्छी तरह से समझो। भागवत में कहानी के रूप में है या ये सब जितने उपाख्यान है, साधारण लोग कहते हैं कि ये माइथोलॉजी है, जैसे मैक्स मूलर था वो इंडिया आया, इंडिया को चिरदिनी के लिए गुलाम रखने के लिए उसने वेदों का अर्थ कल्पित अर्थ किया जो वो नहीं करना चाहिए, जानबूझ करके झूठा उल्टा अर्थ कर दिया। संस्कृत कुछ सीखा था मैंने, ऐसा कि इनकी संस्कृति कहेंगे ये सब गप भूत की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, वेदों में कोई सार की बात नहीं है। और उसी को लेकर के उसने जो जर्मनी को जो विद्याएं दी उसी से आज विमान चल रहे हैं और क्या क्या बेतार का तार और ये सब चीजें चल रही हैं, रेल फेल जीतनी थी सब उन लोगों ने किया। हमारे देश में इसको दानवी शिक्षा दे समझ करके इसका बहिष्कार किया था, सचमुच में दानवी शिक्षा है, शरीर से संबंधित है। अभी जो विज्ञान का आविष्कार जितने हो रहे हैं वो मरने के लिए हो रहे हैं। आत्मा का इसमें डिस्कवर क्या हुआ, एक चिट्ठी का टांग आज तक कोई विज्ञान वाले नहीं बना सकते, और की तो बात क्या। जैसे भगवान ने एक पेड़ बनाया आम का, उसमें फल लगा वो गिर गया तो फिर एक पेड़ हो गया, एक पहले में एक गाय बनी, एक सांड बना, उसे अब आज तक चलती रही। विज्ञान ऐसा कोई चीज तो बना दे जो उसका लगातार चलता रहे। कारखाना बना देंगे, स्विच दबा देंगे और इसके बाद में क्या घर्षण से हुआ, सभी लोग ध्वंस हो जाएगा। एटम बम बनाते हैं, रखते हैं दूसरों के लिए और अपने आप ध्वंस हो जाता है। हिटलर का क्या हुआ? इसलिए ये सब आसुरिक विद्या है। यहां तक कि किसी का प्राण संचार करना भी इसको आसुरिक चिंता कहते हैं। शरीर यदि खत्म हो गया तो उसको बनाने की जरूरत? अरे आत्मा को पहचाना, आत्मा तो अजर अमर नित्य है। ये शरीर को कपड़े को बचाने की क्या जरूरत? आत्मा को देखो कि आत्मा क्या है। हम लोग इतने बैठे हैं, आत्मा को कोई नहीं देखता। उस आत्मा को देखो तो भीतर में देखो जो अपने आप सब दुखों से रिहाई देता है। इसलिए वो कह रहे हैं देखो, अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, ब्राह्मण का लड़का था, सदाचारी था, वेदों का उसने अध्ययन किया, गायत्री का रोज पाठ करता, प्रतिदिन देवताओं के लिए हवन करता। जब वो योग्य हुआ, एक ब्राह्मण लड़की से, योग्य लड़की से, शिक्षित पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी हुई, वैदिक रीति के अनुसार में। एक दिन वो माता पिता के यज्ञ करने के लिए, आहुति के लिए कुछ लकड़ी आता तो समीधा कहता उसको कहते हैं, समीधा लकड़ी लाने के लिए गया जंगल। वहां जाकर के एक अजीब चीज देखा, देखा एक कोई शूद्र की लड़की कुछ अर्धनग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में बैठी है, शराब का घड़ा रखा है, उसके पास में एक नौजुवक बैठा है, वो भी तिराई ही पी रहे हैं, होश में नहीं रहे और कुछ ऐसी गंदे हरकत इत्यादि करने लगे, उसका चित्त अपने आप निकल गया। बहुत उसने चेष्टा की अपने मन को स्थिर करने के लिए, स्थिर नहीं कर सका, लौट आया घर, लकड़ी के लिए आया, किंतु आज लकड़ी में मन नहीं, माता पिता की सेवा में मन नहीं, आज अपनी स्त्री में भी मन नहीं, चित्त उसका वहीं पर रह गया, चित्त छोड़ करके उसको आना पड़ा। बहुत चेष्टा की मन को शांत करने के लिए, जितनी चेष्टा करता है और मन काम उसे और बाहर चला गया। उसने अपनी स्त्री को छोड़ दिया, मां बाप को छोड़ दिया, चोरी करके उसकी सारी संपत्ति उस वेश्या के लिए दे दिया और उसका मन को खुश करने की चेष्टा करने लगा। अब घर में कुछ रहा नहीं, स्त्री रो रही है, बच्चे बिल बिला रहे हैं, माता पिता खूब समझ आया नहीं, बात माना, उस समय कुत्ते से भी अधिक वो कामी हो जाते, किसी की बात नहीं सुनते, जिनका ध्वंस होना होता है ऐसी बुद्धि दुर्बुद्धि होती है। जब कुछ नहीं हुआ तब वो सब कुछ बेच बाज करके सब घर को तबाह नष्ट कर दिया, अपनी स्त्री और बच्चों को भी छोड़ दिया और चला गया उसी जंगल में, उसी वेश्या के पास में, और उसी के पास न रह करके पैसा तो है नहीं, डकैती करने लगा, चोरी करने लगा, लोगों को मारने काटने लगा, किसी प्रकार से उसको धन चाहिए, इस प्रकार से उसका जीवन ही एकदम बदल गया। कुछ दिनों के बाद में उसको 8 संतान उसकी हुई, 8वें में अंतिम जो था उसका नाम, पूर्व जन्म का तो या इस जन्म के संस्कार था, उसने हिंदू रीति के अनुसार में उस बेटे का नाम रख दिया नारायण। आजकल तक घेटू, मेटू, मंटू, टंटू, चंटू, खंटू, माने जो कुछ आ जाए मुख में वही रख दो, और लड़कियों का नाम भी ऐसे ही जिसका कोई माने नहीं होता है। अरे सीता नहीं रख सकती, उर्मिला नहीं रख सकती, माधवी नहीं रख सकती, राधा नहीं रख सकती, विशाखा, चित्रा, कितने नाम है, बच्चों के नाम कितने सुंदर सुंदर हैं, कृष्ण दास, राम, बलराम इत्यादि, लक्ष्मण, ये सब कितने सुंदर सुंदर नाम है, तो नहीं रखेंगे। अरे पार्वती इत्यादि कितने सब सुंदर सुंदर नाम, नहीं रख करके ऐसी गंदी नाम जिसका कोई, अच्छा आजकल कल लड़के पिताजी को पिताजी नहीं कहेंगे, डैड मैंने क्या जाना, डैड मैंने तो मृत्यु होती है, डैडा जाने क्या, डैडा डेडी करेंगे। अरे अच्छा नाम रखो भाई, जिसे एक नाम करने से भगवान का नाम हो जाए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, माताओं से और पिता से, अपने बच्चों का नाम कृष्णदास, रामदास, राम, शंकर का भी नाम रख सकते हैं, ऋषिकेश, माधव, मुरारी, मधुसूदन, गोविंद, गोपीनाथ, ये सब कितने नाम सुंदर सुंदर हैं, नहीं रख करके डेडी फेडी ये सब नाम रखना। हम समझते कि डॉग रखने में भी उनको कोई हर्ज नहीं, किंतु कृष्ण नाम नहीं रखेंगे। इसलिए उन्होंने पूर्व जन्म अपने संस्कार से ब्राह्मण तो थे ही, बच्चे का नाम नारायण किया। उसका फल क्या हुआ? बहुत अच्छा फल हुआ, उसी को बतला रहा। अनजान में उन्होंने नाम रखा, किंतु फल यह हुआ कि उनका भगवान का नाम होने लगा। नारायणी द्वारा गोदी में लेकर के चुंबन करते, बैठाते, पानी पिलाते, नारायण द्वारा। अब इसका अभ्यास होने लग गया, पहला जो नाम हुआ उसी से वो तर गया था। किंतु कैसे होता है, जैसे साइकिल चलाते हैं और पैडल को चलाना बंद कर दें तो अभी तो अभी कितने दूर तक चला जाता है। जैसे रस्सी जल गई किंतु उसकी ऐठन रहती है, रस्सी तो जल गई किंतु उसका ऐठन, समझ रहे हैं ये कि नहीं आ रहा समझ? कोई रस्सी होती है ना,
बल नहीं,
मुंह इत्यादि,
रस्सी जल के बल नहीं,
किंतु उसका बल ऐसा ही रहता है, हाथ से छू तो बस राख होकर के गिर जाएगा। ऐसे ही उसने जो नारायण का जो नाम किया उसके पाप ताप सब दूर हो गए, किंतु पूर्व जन्म के अभ्यास से वो ऐसा करता रहा। कहे कैसे, और एक उपमा से समझिए। एक सांप था, खिलाड़ी ने जो मदारी होते हैं ना जंगल से पकड़ते हैं, उसको पकड़ करके उसके बीच के दांत को निकाल दिया है ना, और नचा रहा है। हम लोग देखते हैं कि ये सांप है, किंतु सांप का जो असल जो बीष है उसमें नहीं है। अब वो ऐसे काटता भी है उसका कुछ नहीं होता, क्योंकि बीष का दांत निकाल लिया है, और दांत निकालने पर भी वो सांप ऐसे जरूर करेगा क्योंकि पहले का अभ्यास है ऐसे करने का, किंतु उसमें कुछ है नहीं। ऐसे इसने जो नाम किया भगवान का, पहला नाम जो रखा उसी से इसके सारे पाप दूर हो गए। और इसके बाद में नारायण आ जा, नारायण बैठ, नारायण ये किलो वो जरा ले आओ, जरा बड़ा हो गया तो इस तरह से नारायण नारायण जो निकला ये हो गया अभ्यास, और भी आगे बढ़ गया। किंतु अभ्यास से किसी को मार भी रहा है, गाली भेज भी रहा है, और शराब भी पी रहा है, सब कुछ हो रहा है, किंतु उसका अब वो जो अब ये था मूल वो निकल गया, बीच निकल गया। कुछ दिनों के बाद में 80 वर्ष का हुआ और इसका काल आया। सब जब काल आया देखा, जैसे उसने तन और मन और वचन से जितने पाप किए हैं, आदमी तो तीन से पाप करता है, मन से सोचेगा, हाथ और पैर से करेगा, तो तन मन और वचन, वचन से गाली देता है, ये भी पाप है। ये तीन रूप धारण किया, तीन जम के दूत आए और उसकी पकड़ करके आत्मा को निकालने लगे। जब देखा भयंकर रूप, रूप देख करके डर गया, पैखाना और पेशाब होने लग गया। जिस समय वो डर गया उसी समय में डर करके देख करके उसने पुकारा, नारायण नारायण, भगवान के लिए नहीं पुकारा, वो बच्चे के लिए अभ्यस्तता कहने के लिए सोचा, जो बच्चा बच्चे को पुकार रहा है वो आकर के मेरी रक्षा करे, बच्चा क्या रक्षा करेगा। नारायण नाम अपने बच्चे के लिए क्या, किंतु प्रभु ने सुन लिया नारायण नारायण, छठ वो उन्होंने अपने दूतों को भेजा। ना रा या ण, ये कितने अक्षर हुए,
चार।
चारों ने एक एक रूप धारण किया, शंख चक्र गदा पर चार दूत आए और उसके तीन दूत। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग किस लिए आए, विष्णु के दूतों है, तुम लोग किस लिए आए, तो हम लोग जमराज की आज्ञा से आए हैं, जो जिए जितने पाप जगत में है ये सब पाप किया इसने, इस दुष्ट ने धार्मिक माता पिता की सेवा छोड़ दी, परम पति व्रता स्त्री को उसने छोड़ दिया, बच्चों का पालन करना छोड़ दिया, और पाप करने लगा एक दूसरी वेश्या के साथ में मिलकर, डकैती चोरी इसने की, इसलिए इसको हम दंड देने के लिए ले जा रहे हैं, इसको जन्म महाराज के यहाँ ले जाकर के इसके समस्त कर्मों का लिस्ट बनाया गया है, इसके अनुसार में इसको जन्म जन्मांतर तक कष्ट। अरे भले आदमियों, विष्णु के दूत का तुम लोगों का धर्म का ज्ञान नहीं, जगत के ही जम पर विश्वास करते, अच्छे बुरे कर्मों का फल अच्छा और बुरा देते, और उनके साथ में तू विश्वासघात कर रहा, अब तो कैसे विश्वासघात कर रहे। अरे भाई जो जितना भी पापी हो, भगवान का एक नाम निकल जाए, राम कृष्ण नारायण इत्यादि हरि, समस्त पापों से दूर हो जाए। यहां तक कि मातृघाती, पितृघाती, गुरुघाती और द्रोही संसार का, उसका भी उद्धार हो जाता है, जिसने घर को जला दिया इसको आत्मताई कहते हैं। आजकल तो ये सब कोई चीज ही नहीं, सामूहिक रूप में 10-20 लाख आदमियों को भी हिरोशिमा या हिरोशिमा जापान में बम से उड़ा दिया। बड़े बड़े राजनीतिक लोग अपने विरोधियों का इसी तरह से एकदम कितने लोगों को पार कर देते, इसको ऐसा नहीं समझते, कोई पाप नहीं समझते, लेकिन तो है था वो हमारे कर्म हमको पीस डालेंगे, ऐसा याद रखो। सब साक्षी है, भगवान यहाँ पर साक्षी बैठे हैं, वायु साक्षी है, सूर्य साक्षी है, हवा साक्षी है, चंद्र साक्षी है, जो कुछ पाप करते हैं तन मन वचन से वो सब का लिस्ट हो रहा है, आप समझे और ना समझे। इसी के प्रतिक्रिया से कोई जन्म से ही अंधा जन्मा, क्यों? इस जन्म तो उसने बुरा कोई कर्म नहीं किया, जन्म के कुछ दिनों के बाद में किसी ने उसको गोली से उड़ा दी, क्यों? इस जन्म तो कुछ किया नहीं, एक समय में ही एक टाटा बिरला के घर में, रॉकफेलर कौन है अमेरिका के सबसे बड़े धनी, उनके घर में जन्म लिया एक लड़के ने, और एक उसी समय में एक लड़का एक दरिद्र के घर में जन्म लिया उसको खाने के लिए, क्यों? इसको क्या उत्तर आजकल विज्ञान दे सकता है? नहीं दे सकता, ये पूर्व जन्मों के कर्म के फल। पहले जन्म में हमने जैसा किया, इस जन्म वर्तमान में हम अंधे लंगड़े लूले बुद्धि नहीं है, कैसे ने? कुछ मूर्ख लोग उनको कहते हैं कि दरिद्र ही भगवान है, तो धनियों में अच्छे लोगों ने जो सज्जन व्यक्ति है वो भगवान है, यही भगवान है, अरे उन पर दया करो, ये तो बात ठीक है, कपड़े लत्ते भूखा को खाना इत्यादि दो, ये तो ठीक है, तुम्हारा कर्तव्य और कर्म है, किंतु यही लोग भगवान है ऐसा नहीं, दरिद्र भगवान नहीं है। अरे भगवान जो समस्त लक्ष्मी के लक्ष्मीपति हैं वो कहीं दरिद्र होते हैं? अरे दरिद्र नारायण, अरे कभी दरिद्र नारायण को खिला रहे हैं, दरिद्र नारायण का तुम्हारा अपना क्या कर रहा, अपने भूत को खिला रहा है, दरिद्र नारायण दरिद्र नहीं होता, ये सब गलत बातें हैं। जनता जनार्दन, जनता जनार्दन माने क्या? लोगों को अपने जवान पर लगाम नहीं है, अरे जनता जनार्दन हो गई, जो भूख मर रही है, बदला रही है, लोगों से झगड़ा की बात कर रही है, राजनीति में लड़ रहे हैं, इधर का उधर उधर कर रहे हैं, ये जनार्दन भगवान हो गए? अरे जनार्दन तो जनार्दन है, विश्व के प्रभु है। इसलिए देखो, इसने एक बार तो नारायण नाम लिया बच्चे का नाम रखने पर, और तब से काजे ने कितनी बार किया है, इसके पाप रह गए हम लोग नहीं जानते, हम तो इसको ले जाएंगे, जब नाग पास दे करके उनके आत्मा को निकालने लगे तब विष्णु के दूतों ने उनको धमकाना आरंभ किया।